आज हम चौथा श्लोक कर रहे हैं सत्रहवें अध्याय का पांचवें स्कंद से। श्लोक आपके सामने है। यह अध्याय गंगा के अवतरण के बारे में है। हमारे पास आपको दिखाने के लिए एक स्लाइड शो भी है गंगा मैया के ऊपर। हम आशा करते हैं आप भक्तों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। मेन बात यह है कि समझ में आएगा गंगा जी के बारे में। तथा अनेक सहस्त्र कोटि तथा अनेक सह विमान अनेक संकुल देवयाने अवतरन्ति इन्दुमण्डलम् आवार्य ब्रह्म सदने निपतति तथा सप्त ऋषियों के सात लोकों को पवित्र करने के पश्चात अनेक कई सहस्त्र हजार कोटि करोड़ों विमान अनेक विमान सेना सहित संकुल समूहित देवयानेन देवताओं के अंतरिक्ष से होकर अवतरंती उतरते हुए इंदुमंडलम चंद्रलोक को आवार आप्लावित करके ब्रह्म सदने सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा के आवास तक निपतति गिरता है। ट्रांसलेशन अनुवाद। ध्रुव लोक के पड़ोसी सातों लोक को पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है, तब यह चंद्रलोक को अप्लावित करता हुआ अंततः मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंचता है। प्लीज रिपीट। ध्रुव लोक के पड़ोसी सात लोगों को पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है, तब यह चंद्रलोक को आप्लावित करता हुआ अंततः मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंचता है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की हमें स्मरण रखना होगा कि गंगा नदी ब्रह्मांड के बाह्यावरण से भी परे कारण समुद्र से निकली है। भगवान वामन द्वारा बनाए गए छिद्र से निकलता हुआ कारण समुद्र का जल स्त्रावित होकर पहले ध्रुव लोक में पहुंचता है और फिर उसके नीचे सात लोकों में पहुंचता है, फिर इसे असंख्य स्वर्गिक विमानों के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाया जाता है और तब यह मेरु पर्वत की चोटी पर गिरता है जिसे सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। इस प्रकार गंगा का जल अंत में अधोलोकों तथा हिमालय श्रृंगों में पहुंचता है, जहां से बहकर यह हरिद्वार पहुंचता है और फिर भारत के समूचे मैदानी भाग को पवित्र बनाता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि गंगा का जल ब्रह्मांड के ऊपर से विभिन्न लोकों तक किस प्रकार पहुंचता है। यही जल नैसर्गिक विमानों द्वारा ऋषि लोकों से अन्य लोकों तक पहुंचता है। आज के तथाकथित समुन्नत विज्ञानी उच्चतर लोकों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु इसके साथ साथ उन्हें इसका अनुभव हो रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का अभाव हो रहा है। यदि वे सचमुच समर्थ विज्ञानी होते तो वे स्वयं विमानों द्वारा अन्य लोकों की यात्रा करते, परंतु ऐसा कर पाने में वे असमर्थ हैं। उन्होंने अब चंद्रमा की यात्राएं बंद कर दी हैं और अब वे अन्य ग्रहों में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। एंड ऑफ द पर्पट। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामायं ददाति स्वपादांतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस अध्याय में गंगा के अवतरण के बारे में बताया गया है और इस पर्टिकुलर श्लोक में कैसे ध्रुव लोक के पड़ोसी सात लोगों को पावन करने के पश्चात गंगा लगभग इस धरती तक आती हैं, उसका रास्ता बताया गया है। और सहस्त्र कोटि हजारों करोड़ों विमानों में उनका जल भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है, जिससे कि उस सही स्थान से बहकर जा सके। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्मरण रखना होगा कि ब्रह्मा नदी कहां से आ रही है। आ रही है सारा रास्ता और सब कुछ बता, लेकिन कहां से आ रही है, कहां से आ रही कौन बता सकता है? कारण सागर, कौन कौन कारण सागर के बारे में जानता है? पहले सुना है कारण सागर के बारे में, कौन रहता है वहां कारण सागर में, कौन निवास करता है, कौन? कर्णोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु कारण सागर में या कारण सागर में विश्राम करते हैं और उसी जल को हिंदी में कर्ण सागर और इंग्लिश में कहते हैं कॉजल ओशन। ये कर्ण सागर या कारण सागर इसलिए भी है कि ये कर्णोदक्षाय विष्णु जो वहां निवास करते हैं वो सभी कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कौन है सब कारणों के कारण? सब कारणों के कारण कर्णदक्षाय विष्णु है। वो कौन से कारण है जिनके कारणों के वो कारण है? जैसे पूछा जाता है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काय को दुनिया बनाई, काय को बनाई, वो तो हम सबको मालूम है। क्यों बनाई? क्योंकि ये जेल है, हम लोग अपराधी हैं, इसलिए हमें जेल में भेजा गया। लेकिन किसने बनाई? सब कारणों के कारण, कौन से कारणों के कारण? केवल मृत्युलोक के कारणों के कारण, कर्ण दक्षाय विष्णु है, क्योंकि उनके भी कारण कोई और हैं, अल्टीमेटली कृष्ण। लेकिन कृष्ण से बलराम, बलराम से क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, क्या कहते हैं, चतुर चतुर चतुर्भुज अवतार, चतुर्व्यूह अवतार, और उसमें महासंकर्षण, और महासंकर्षण से फिर एक और चतुर्व्यूह अवतार, सेकेंडरी चतुर्व्यूह, और उसमें जो अंत में अनिरुद्ध हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रदुम्न, अनिरुद्ध, अंत में जो अनिरुद्ध हैं, उनसे कर्णदक्षाय विष्णु आते हैं। अगर कर्णदक्षाय विष्णु के दर्शन हो गए तो आप लोगों में से कौन कौन पहचान लेगा उनको? एक माता जी खाली पहचान सकती है, बाकी सब कोई पहचान नहीं पाओगे? तो ठीक है, आज के प्रवचन में अगर कुछ सीखो चाहे नहीं सीखो, लेकिन इतनी बात जरूर सीख जाना कि अगर जो कर्ण दक्षाय विष्णु आपके सामने आ गए तो आप कैसे पहचानोगे? कौन कौन पहचानना चाहता है हमको? तो सभी पहचानना चाहते हैं। जैसे कि आम विष्णु, आप सब लोग, भक्त लोग सब जानते हैं, आम विष्णु मतलब के गर्भोदक्षाय विष्णु, जो शेष शय्या पे विश्राम करते हैं, और उनके चरणों की तरफ देवी लक्ष्मी, और उनके नाभि से वो एक स्टेम निकलता है, उसके ऊपर कमल और उसके ऊपर ब्रह्मा, सब जानते हैं। ये विष्णु का वो स्वरूप है। पुरुष अवतार, ये तीन पुरुष अवतार हैं, उसमें से जो गर्भोदक्षाय विष्णु बीच वाले अवतार हैं, उनसे आप सब लोग पूरी तरह से फैमिलियर हो। लेकिन कर्णदक्षाय विष्णु से बहुत से लोग फैमिलियर नहीं होते। कर्णदक्षाय विष्णु वो होते हैं, जैसे आपको गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे हुए दिखेंगे, ऐसे ही कर्णदक्षाय विष्णु भी लेटे हुए ही दिखेंगे। अंतर क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से वाले लेटे हैं, उसके लिए आप देखेंगे ध्यान से तो कोई शेष शैया नजर नहीं आए। क्या हो गया? ये जैसे आपको सामने दिख रहे हैं, ये कर्णदक्षाय विष्णु है। किसी को अंतर समझ में आ रहा है? इनके नीचे कोई शेष शैया नहीं है, ये ऐसे ही डायरेक्टली ओशन में लेटे हैं। ये कर्णदक्षाय विष्णु कर्ण ओशन में लेटे हैं, जो अभी आपके तात्पर्य मिशेल प्रपात बता रहे हैं, कर्ण सागर, ये कर्ण सागर है। कैसे पता चले कि कोई भी जल, जल का स्थान कर्ण सागर है? वो तभी पता चलेगा जब उसके अंदर अगर कर्णदक्षाय विष्णु निवास करते हैं तो वो कर्ण सागर है, अगर कर्णदक्षाय विष्णु वहां निवास नहीं करते तो वो कर्ण सागर नहीं है। तो ये एक तो ये बिल्कुल वैसे ही लेटे हैं जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु लेटे रहते हैं, लेकिन कोई शेष शैया नहीं है, उसके अलावा कोई लक्ष्मी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लक्ष्मी से वंचित है, लेकिन इनके दर्शन ऐसे होते हैं बिना लक्ष्मी के, और इनके नाभि से कोई कमल नहीं निकल रहा। किसी को दिख रहा है? कोई कमल नहीं निकल रहा, उसके ऊपर कोई ब्रह्मा नहीं है। ये कर्ण दक्षाय विष्णु है, और इनको पहचानने का, इनके शरीर के छिद्रों में से, जिसको कहते हैं हिंदी में रोम कहते हैं, रोम रोम में से पूरे के पूरे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और ब्रह्मांड वो होते हैं जिनके द्वारा ये मृत्युलोक बनाए। मृत्युलोक का अर्थ है बहुत सारे ब्रह्मांड जो सब नाशवान है। मृत्युलोक का अर्थ है जहां सबकी मृत्यु है, उसकी खुद की भी मृत्यु है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो मृत्युलोक है। ये सारे ब्रह्मांड जो इनके शरीर से निकलते हैं, ये सब भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, सबकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ये मृत्युलोक है। इसलिए इसको भौतिक जगत, भौतिक संसार, संसार सागर, वो सब इसी को कहते हैं। तो कितनी अवधि होती है ब्रह्मांड की? महाविष्णु या कर्ण दक्षाय विष्णु के एक सांस की, एक सांस जब वो बाहर निकालना शुरू करते हैं, ये सब ब्रह्मांड उनके शरीर से प्रकट होते हैं, और जब तक वो निकालते रहते हैं तब तक वो दूर 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 उनसे जाते रहते हैं। फिर एक समय आता है जब भगवान वापस उस श्वास को खींचना प्रारंभ करते हैं, जब उनका उस श्वास वापस खींच लिया गया, तो एक एक करके, दो दो करके, दस दस करके, सौ सौ करके, जितने भी ब्रह्मांड उनके शरीर में से प्रकट हुए थे, वो सब अब अंदर वापस जा रहे हैं। जब वो अपना उस श्वास वापस खींचना अंत हो जाएगा, तो जितने भी ब्रह्मांड उन्होंने श्वास स्टार्ट करने से के समय से बनाए, वो सब वापस अंदर आ गए। उतने समय में हमारे ब्रह्मा का 100 साल हो जाता है, और हमारे ब्रह्मा का 100 साल में एक दिन में 360 दिन होते हैं, और एक दिन में हमारे जो युग चक्र हैं, जिनको आप जानते हो, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनके 1000 चक्कर घूम जाते हैं, और फिर उतनी बड़ी ब्रह्मा की एक रात है, उसके हिसाब से 360 दिन में एक साल बनेगा, उसके बाद 100 साल बनेंगे, उतने में ये महाविष्णु केवल एक सांस लेंगे, एक सांस। हम लोग कितने सांस लेते हैं, किसी को पता है? एक घंटे में कितना सांस लेते हैं हम? 60। एक घंटे में 960 बार हम सांस ले लेते हैं। उसको अगर हम 24 से गुणा करें तो करीब 23,000 कुछ 23 से 24,000 के बीच में सांसों की गिनती आती है 24 घंटे में। तो बहुत से लोग आपसे कहेंगे, क्यों ये माला लेके जप करते रहते हो, 2 घंटे जप करते हो? अरे हम तो श्वास श्वास में सारा दिन जप करते हैं। आप लोग 2 घंटे माला पे बैठ के जप करके सबको दिखावा करते हो। हमारी तरह सांस सांस में भगवान का नाम लिया करो, हमारे हर सांस में भगवान का नाम है, तो उनको आप बता सकते हो क्या कि जब हम 16 माला का जप करते हैं अपने गुरु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की आज्ञा के द्वारा। तो 16 माला में 108 मन के, 16 को 108 से गुणा किया और एक महामंत्र में कितने नाम आते हैं? 16 नाम। उसको 16 से गुणा करो तो गिनती आती है करीब 28,000। तो आप लोग जो 16 माला का जप कर रहे हो, 28,000 बार भगवान का नाम ले रहे हो और केवल 23,000 सांस ले रहे हो, इसका मतलब एक सांस में एक नाम से ज्यादा कर रहे हैं हमारे हरे कृष्णा के भक्त। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की। अब ये कैलकुलेशन आपको याद रहेगी, कोई आपको बताए कि वो सांस सांस में जप ले रहा, जप कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो हमारे भक्त एक सांस जितनी सांस लेते हैं उससे ज्यादा नाम लेते हैं, सांस सांस से भी ज्यादा, सांस सांस से भी ज्यादा। क्यों? वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे गुरु इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का हमें ऐसा आशीर्वाद है, आदेश है, प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से हम ये भगवान का नाम, भगवान नाम का जप करते हैं और सांस सांस में एक से ज्यादा करते हैं। सबको कर्ण दक्षाय विष्णु समझ में आ गए? अब अगर किसी को कर्ण दक्षाय विष्णु के दर्शन हो गए तो सब पहचान लोगे? कौन नहीं पहचान पाएगा? ओ लगता सब पहचान लेंगे। ये कर्ण दक्षाय विष्णु या महाविष्णु, ये इन्हीं को साइंटिस्ट लोग ब्लैक होल भी कहते हैं। उन्हें एक स्थान ऐसा मिला है जहां से लोग बन बन के उसके अंदर जा रहे हैं, एंड हो रहे हैं, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु ने, महाविष्णु ने श्वास पूरी तरह से निकाली हुई है और उसको वापस खींच रहे हैं, तो इसलिए उनके अंदर बहुत सारे लोग जो सबसे पहले निकले थे वो वापस जाते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए साइंटिस्ट लोग उसको ब्लैक होल कहते हैं। और साइंटिस्ट लोगों ने ये पिक्चर खींचा है ब्लैक होल का, जो हमें लगता है कि ये अगर जो ब्लैक होल है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्लैक होल की डिस्क्रिप्शन जो है वो महाविष्णु से मैच करती है। ये आपके गर्भोदक्षाय विष्णु जो आप सब लोग जानते ही हो, लेकिन इसके अलावा ये तीसरे, ये इनको जानता है कोई? ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है, यही परमात्मा है, यही परवरदिगार हैं, यही घट घट में वास करने वाले हैं, यही कण कण में रहते हैं। कोई आपको कहे कण कण में भगवान है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? वो कण कण में भगवान है, सही है, यही वो भगवान है जो कण कण में निवास करते हैं। साइंटिस्ट भी इनको मानते हैं कि ये कण कण में है, इसीलिए कण को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? अणु। अणु, अणु के अंदर क्या होता है? अणु के अंदर एक केंद्र अणु होता है, उसका सेंटर, और उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, उसके अलावा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरह से गति करते हैं, करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से गति करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप से गति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान परमात्मा कण कण में निवास कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन हर समय गति करते रहते हैं, क्योंकि जो डेड मैटर है उसमें गति कहां से आएगी? उसमें गति क्यों होनी चाहिए? लेकिन फिर भी हर अणु में ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये इसका प्रूफ है कि हर कण में भगवान है। और ये शिरोदक्षाय विष्णु आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये शिरोदक्षाय विष्णु बैठे हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इनका गुण या इनकी पहचान ये ज्यादातर आपको लेटे हुए नहीं नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि कभी नहीं लेटते, लेकिन कभी लेटे हुए नजर नहीं आएंगे, ज्यादातर ऐसे खड़े हुए नजर आएंगे, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है और ज्यादातर कमल के ऊपर खड़े हुए नजर आते हैं। तो जब आपको शिरोदक्षाय विष्णु के दर्शन हो तो आपको पहचान लेना चाहिए कि ये शिरोदक्षाय विष्णु है, गर्भदक्षाय विष्णु नहीं है और कर्णदक्षाय विष्णु नहीं है। आप कौन कौन है यहां पे जो शिरोदक्षाय विष्णु को पहचान लेगा? सब पहचान लेंगे, वेरी गुड। ये शिरोदक्षाय विष्णु कहां पे निवास करते हैं? ऐसे तो घट घट में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी इनका निवास स्थान भी है क्षीर सागर। ये क्षीर सागर में निवास करते हैं, यही वो परमात्मा है जो घट घट में निवास करते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में आपने ये सुना है कि दो चिड़िया, एक दृष्टा एक कर्ता, आत्मा और परमात्मा। एक चिड़िया फल खा रही है और दूसरी उसको केवल देख रही है, दृष्टा है, उसको रोकती नहीं है, उसको कुछ और नहीं कहती, खाली देखती है। यही वो परमात्मा है जो हर किसी के हृदय में निवास करते हैं, जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदश्च सर्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूं, हर शास्त्र हर वेद हर किसी का अंतिम निर्णय मैं हूं, मैं ही केवल जानने के योग्य हूं, उसके अलावा इस संसार में कुछ भी जानने के योग्य नहीं है। इंसान की स्मृति विस्मृति सब कुछ मेरे से आती है। तो यही परमात्मा है। आज आपको ये तीन परम सत्य या पुरुष अवतार हमने कर्ण सागर की वजह से दिखाए, दर्शन कराए। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अभी ले लेते हैं, नहीं तो हम अभी आपको गंगा वाला शो दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको गंगा का रास्ता दिखेगा, समझ में आएगा कि कैसे गंगा, जैसे कि हम सब लोग ऐसा जानते हैं सुनते हैं कि गंगा जी कहां से आती हैं, शिव जी के यहां से, और शिव जी कहां पे बैठते हैं, कैलाश पर्वत, जो अभी तक बताया तीन पुरुष अवतारों के बारे में, उसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो हम ये आगे गंगा जी पे जाने वाले हैं। कोई प्रश्न नहीं है, ओके। तो ये कैलाश पर्वत और रियल कैलाश पर्वत का रियल पिक्चर आपको शायद पता है कि नहीं, कैलाश पर्वत हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उससे बहुत कम है, 2000 मीटर के करीब कम है। बहुत से लोग हिमालय पर्वत पे एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गए, कैलाश की चोटी तक आज तक कोई नहीं पहुंचा, कोई एक भी व्यक्ति कभी भी कैलाश की चोटी पे जा नहीं पाया है। ऊपर पहुंचने से तीन चार हजार मीटर नीचे कोई शक्ति उसको पीछे धक्का दे देती है, जाओ वापस, नॉट अलाउड, डोंट कम हियर, यहां प्रवेश निषेध है। तो ये गंगा हम सब समझते हैं कि यहां से आती है, और हमारे यहां भारत में एक स्थान भी है जिसको कहते हैं गंगोत्री। ये गंगोत्री का मंदिर है, कौन कौन गया गंगोत्री? तो गंगोत्री का मंदिर तो है, लेकिन आज गंगा गंगोत्री से नहीं आती, उससे कहीं पीछे से आती है। तो गंगोत्री है जहां, या आप जब बद्रीनाथ जाते हो तो वहां पे अलकनंदा के दर्शन होते हैं, उसके पीछे नीलकंठ के दर्शन होते हैं, नीलकंठ पर्वत के, और ऐसा दिखता है कि नीलकंठ पर्वत में से अलकनंदा निकल के आ रही है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कैलाश में से गंगा आ रही है? तो उसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने, ये पहले मैं आपको यहां के दर्शन करा दूं, बहुत से लोग शायद गंगोत्री नहीं गए होंगे। ये गंगोत्री में पाषाण गोमुख है और इसके ऊपर ये दूसरा गोमुख है जहां पैदल चल के जाना पड़ता है। ये ऐसा गोमुख है कि हर साल पीछे हो जाता है, हर साल और पीछे हो जाता है, चलायमान है, क्योंकि ये गोमुख का अर्थ है जहां तक फ्रीजिंग है, उसके आगे जहां वो पिघलनी शुरू हो तो गंगा शुरू हो, वो बर्फ में तो गंगा नहीं है, जब उसमें से पिघल के निकलेगी तो उसको हम गंगा कहते हैं। ये उसका क्लोजर लुक है, जहां तक फ्रोजन है वहां से उसको गोमुख कहते हैं। तो ये सैटेलाइट का लिया हुआ पिक्चर है कि गंगा या गोमुख कैसे पीछे 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 हट रहा है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसको पूरा समझाने का, लेकिन रफली बहुत तेजी से जो गोमुख है वो पीछे की तरफ जा रहा है। ये स्लाइड है जो मैं आपको मेनली दिखाना चाहता हूं। ये कैलाश पर्वत का लिया हुआ पिक्चर सैटेलाइट से, तो इस पिक्चर से पता चलता है कि बीच में जो आपको कैलाश नजर आ रहा है, जो सेंटर में, उसके सब तरफ अलग अलग धाराएं निकल रही हैं और वो फिर छोटे छोटे माउंटेन्स में चली जाती हैं। तो पीछे से बड़े पर्वत से बड़ा पर्वत छोटे पर्वत को फीड करता है, तो आगे आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि ये जल तो इसी पर्वत पे से आ रहा है, लेकिन वो इस पर्वत से नहीं आ रहा, वो पीछे वाले से इस पर्वत को आ रहा है, फिर इस वाले से आगे वाले पर्वत को आ रहा है। तो गंगा वास्तव में कैलाश से ही निकलती है, लेकिन जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, कितने भक्त लोग गए यहां बद्रीनाथ? काफी भक्त लोग बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में आपको ये नीलकंठ के दर्शन होते हैं और लगता है कि अलकनंदा नीलकंठ में से आ रही है, लेकिन नीलकंठ को अलकनंदा पीछे से कैलाश से प्राप्त होती है, तब वो नीलकंठ अलकनंदा को आगे भेजते हैं। ये अलकनंदा है जो आप बद्रीनाथ में दर्शन करते हो, और ये बद्रीनाथ के दर्शन है। ये अलकनंदा आगे जाके एक और गंगा से मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा, और जिस स्थान पे ये दोनों गंगाएं अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलते हैं, उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये दोनों नदियां एक साथ में मिलके आगे जाती हैं और एक और नदी इनमें मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, जहां पे नंदाकिनी नदी उस अलकनंदा को मिलती है। अलकनंदा जब धौली गंगा में मिक्स हो जाती है तो धौली गंगा अपना नाम भूल जाती है, केवल अलकनंदा बन जाती है, और वो अलकनंदा आगे जाके नंद प्रयाग नाम के स्थान पे नंदाकिनी में मिट जाती है। ये नदी अभी भी इसका नाम अलकनंदा है। अलकनंदा आगे जाती है तो एक नदी और उसमें बड़ी नदी उसमें और मिक्स हो जाती है, उसका नाम है पिंडर नदी। पिंडर जिस स्थान पे अलकनंदा पिंडर में मिल जाती है उस स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं, कर्णप्रयाग। ये फिर भी अभी इसका नाम अलकनंदा ही है। जब ये अलकनंदा आगे जाती है तो एक नदी और में मिक्स हो जाती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। वो पहली वाली नंदाकिनी नदी थी, ये मंदाकिनी नदी है। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिक्स होती है तो उसका नाम, उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। आपने शायद ये नाम ज्यादातर पहले सुने होंगे, रुद्रप्रयाग। ये कई सारे प्रयाग हैं, पांच प्रयाग हैं। तो उसमें अब आगे ये नदी मंदाकिनी इसमें मिलके फिर भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, और आगे जाके ये अलकनंदा दूसरी तरफ आने वाली एक बहुत बड़ी महानदी जिसका नाम भागीरथी है। भागीरथी कहां से आ रही है? गंगोत्री से आ रही है। जो गंगोत्री से आती है उसको कहते हैं भागीरथी। जो इधर नीलकंठ से आती है, बद्रीनाथ से आती है, उसका नाम है अलकनंदा। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। और जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं तो दोनों अपना नाम भूल जाती हैं। अलकनंदा खत्म, भागीरथी खत्म, दोनों नदी एक साथ मिलके जब आगे चलती हैं तो उसको हम कहते हैं गंगा। बोलो गंगा मैया की। ये गंगा मैया जो मैंने आपको ये सब नदियां बताई, ये सब मिला के करीब 6 नदियां हैं, ये कैलाश पर्वत के, जैसे कैलाश के टॉप से अगर आप पानी गिराओगे तो कहां जाएगा? सब तरफ फैलेगा, वो टॉप है, सब तरफ फैलेगा। तो उसमें 12 मेजर नदी निकलती हैं, उसमें से 6 इस तरफ भारत की तरफ आ जाती हैं। ये 6 का मैंने आपको हिसाब दिया है, जो 6 नदियां भारत की तरफ आई। अभी 6 नदियां उस तरफ चली गई, चीन की तरफ। वो उन नदियों के नाम उन्होंने चिंग विंग मिंग टिंग कुछ रखे हुए हैं, लेकिन जब वो सारी नदियां एक साथ में 6 मिक्स हो जाती हैं तो वो 6 मिलके वापस भारत में आ जाती हैं। वापस भारत में जब वो प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। उसका नाम हमने, जब वो नदी भारत में प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आसाम नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आती है भारत में होके फिर आगे बांग्लादेश चली जाती है। तो वो ब्रह्मपुत्र 6 धाराओं को लेके उस तरफ जा रही है, और ये हमारी 6 धाराएं इस तरफ वाली उत्तर भारत वाली जो मैंने आपको अभी 6 बताई, ये आगे आके ऋषिकेश आ जाती हैं। ये ऋषिकेश है और ये ही गंगा आगे हरिद्वार आ जाती है। हरिद्वार आने के बाद भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे झरने इसमें मिलते हैं, लेकिन इसके बाद जो एक मेन नदी इसमें मिलती है, नेपाल से आने वाली नदी, उसका नाम है राम गंगा। ऋषिकेश से करीब 800 किलोमीटर आगे एक बहुत बड़ी महानदी राम गंगा नाम की नदी इसमें मिक्स हो जाती है। वो प्रयाग से पहले आगे वो गंगा राम नदी को लेके प्रयाग तक जाती है, जहां पे यमुना जी और सरस्वती दोनों गंगा में मिक्स हो जाती हैं और दोनों अपना नाम भूल जाती हैं। नो मोर यमुना, नो मोर सरस्वती, सब मिलके हो गई गंगा। जैसे कि आपको मालूम है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, जब एक बार चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाना था, वृंदावन जाना था, और वो अपने ध्यान में भाव विभोर हो गए और उन्होंने नदी बहती हुई देखी जो कि वास्तव में गंगा थी, और पूछा, नित्यानंद क्या यही यमुना है, क्या मैं वृंदावन आ गया? नित्यानंद परेशान हो चुके थे उनसे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये यमुना है, आप आ गए वृंदावन। और चैतन्य महाप्रभु कूद गए, उसमें कूद गए, दूसरी तरफ निकले तो वहां अद्वैताचार्य खड़े थे। ओ अद्वैताचार्य आप वृंदावन में क्या कर रहे हो, ये वृंदावन नहीं है, ये तो शांतिपुर है, मैं तो अपने घर में हूं। अब चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया नित्यानंद के ऊपर के तुमने कैसे कह दिया मुझे यमुना कह के गंगा में कूदा दिया, कैसे कह दिया कि ये यमुना है? तो नित्यानंद ने कहा यही तो यमुना है, प्रयाग में यमुना गंगा में मिल गई, अब यमुना कहां, अब तो यही यही है, इसी में यमुना है, मैंने क्या झूठ बोला? तो यमुना इज इनसाइड गंगा, जब एक बार प्रयाग में दोनों मिक्स हो गई तो यमुना कहां, यमुना उसी में, सरस्वती कहां, सरस्वती उसी में, बाकी सब नदियां पीछे जो इसमें मिली वो सब कहां है, वो सब उसी में है। तो नाम केवल गंगा है लेकिन उसमें सब कुछ है। और जब ये गंगा अब एक और भी ज्यादा महानदी हो गई, क्योंकि इसमें यमुना भी चली गई सरस्वती भी चली गई, आगे जाके गंधा की नदी का आपने नाम सुना होगा, गंधा की नदी जहां पे शालिग्राम शिला निकलती है, वो गंधा की नदी कैलाश पर्वत से ही आती है, नेपाल में बहती है, पहले चीन जाके फिर नेपाल आती है, और नेपाल से फिर भारत आके वो गंधा की नदी हमारी गंगा में मिक्स हो जाती है, और आगे ये गंगा काशी जाती है। काशी जाने से पहले इसमें तमसा, गोमती, घाघरा जो सरयू और महाकाली से मिलकर बनी थी, वो काशी पहुंचने से पहले गंगा जी में मिक्स हो जाती है। आपने सुना है सरयू का नाम, सरयू, सरयू कहां बहती है, सरयू का नाम कहां से कनेक्टेड है, अयोध्या से। तो अयोध्या की सरयू आगे जाके महाकाली से मिल जाती है, महाकाली भी एक नदी जो नेपाल से आ रही है, दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो उनका नाम हो जाता है घाघरा। सबसे भयंकर जो बाढ़ आती है वो घाघरा में ही आती है, अभी भी सबसे भयंकर बाढ़ घाघरा में ही है। और ये नदियां तमसा, गोमती, घाघरा, ये सब काशी से पहले गंगा में मिक्स हो जाती हैं, इसलिए आप देखोगे काशी से पहले का जल शायद थोड़ा ज्यादा दूषित हो, काशी पहुंचते हो कम दूषित हो जाता है, उसका दूषण जो है कम हो जाता है, क्योंकि ये नदियां जो है फ्रेश आ रही हैं, इनको कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, कोई मानव इनको कुछ खास गंदा नहीं कर पाते, हमारा मानवों का काम तो चीजों को गंदा करने का ही है। तो ये नदियां निर्जन स्थान से, पहाड़ों से होके आ रही हैं, कुछ खास मानव इसको गंदा नहीं कर पाते, तो वो पवित्र क्लीन जल जो जिसका अभी कुछ दूषण नहीं हुआ वो सब उसमें मिल जाता है, इसलिए काशी में आपको बहुत साफ जल प्राप्त होता है। और उसका नाम वाराणसी, इसलिए वहां पे वरुणा और अस्सी नाम की दो नदियां और गंगा में मिक्स हो जाती हैं, ये दो भी अच्छी बड़ी नदियां हैं, ये भी वाराणसी इसीलिए उसका नाम है कि वरुणा और अस्सी ये दोनों नदियां वहां पे बहती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर बहती हैं, गंगा थोड़ा सा नीचे बहती है, इसलिए वो दोनों को जाके गंगा में मिल जाना पड़ता है और एक हो जाना पड़ता है। कलकत्ता से पहुंचने से थोड़ा सा पहले ये जो गंगा है ये दो बहुत बड़े पार्ट में, अब ये बहुत बड़ी महानदी हो चुकी है, तो बहुत बड़े दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक भाग बांग्लादेश की तरफ चला जाता है और एक हावड़ा की तरफ, जो भाग हावड़ा की तरफ जाता है उसको कहते हैं हुगली, वही हुगली आगे मायापुर जाती है, और जो भाग बांग्लादेश चला जाता है उसको कहते हैं गंगा, वास्तव में दोनों एक ही हैं, खाली दो भागों में विभाजित हो गए। तो जो भाग बांग्लादेश चला गया वो जाके वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है, जो आपको बताया कि छह धाराएं उस तरफ से आ रही हैं, वो जाके ब्रह्मपुत्र में मिली हैं। ये गंगा इधर से जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो उसका मतलब है कि पूरी 12 धाराएं अब मिक्स हो गई, 12 धाराएं मिक्स हो गई, उसका मतलब है गंगा सागर। जो गंगा सागर पे तीर्थ जाने का नहाने का महत्व है वो ये है कि गंगा सागर पे आपको 12 की 12 धाराओं में एक साथ स्नान करने को मिल रहा है, क्योंकि इधर 6 आ रही हैं, 6 उधर जा रही हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आप भक्तों के ऊपर विशेष कृपा होने के कारण जब वो गंगा जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में, तो उसमें से एक छोटी सी धारा अलग होके वापस इंडिया आ जाती है। एक छोटी सी धारा उसमें से अलग होके वापस इंडिया आ जाती है, उसका नाम है जलांगी। जलांगी का नाम किस किसने सुना है पहले? मायापुर में एक तरफ से कहते हैं गंगा, टेक्निकली हुगली लेकिन रियली गंगा, और दूसरी तरफ से जलांगी। तो मायापुर में जहां पे हम ये टेंपल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम बना रहे हैं, ये जलांगी आके हुगली में मिक्स हो जाती है। अगर साफ दिखे तो इसमें दो अलग अलग कलर की नदियां आपस में मिक्स होती हुई आपको नजर आएंगी। तो जब ये जलांगी हुगली में मिक्स हो गई तो वास्तव में यहां से गंगा सागर शुरू हो गया, क्योंकि यहीं पे आपको पूरी 12 धाराएं मिल रही हैं। आगे जाने से कुछ नहीं मिलेगा, केवल समुद्र और मिलेगा। इसलिए अगर आपने मायापुर में जलांगी हुगली से मिले उसके बाद अगर स्नान कर लिया कहीं भी, तो आपका गंगा सागर हो गया। गंगा सागर जाने की अलग से आवश्यकता नहीं है, खास तौर से वैष्णवों को, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जलांगी और ये हुगली दोनों मिलने के बाद पूरी 12 धाराएं साथ में हो जाती हैं। अगर 12 धाराओं में आपने स्नान कर लिया तो गंगा सागर में स्नान कर लिया। कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं है? सबको सब कुछ समझ में आ गया? मेरे पास प्रश्न है, मैं पूछ लूं? थैंक यू। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।